आज आपको जो बात बताई जाती है वे बहुत फायदे की है। समझ में आ जावे तो बात ही क्या है। जो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलता है, जो साधना अवस्था में है, उससे भूल होना स्वाभाविक है। परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले से कोई भूल होती है तो भगवान क्षमा करते हैं। मनुष्य अज्ञ है, माने जानता नहीं, अज्ञानता में दोष हो ही जाता है। जितने भी सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, मत है, मतांतर है, सब में भ्रम भरा हुआ है और सब मुक्ति भी देने वाले। इनमें भ्रम भी है और मुक्ति भी देने वाले, एक एक से अलग है, इसलिए तो भ्रम में डालने वाले हैं। कोई कहता है निर्गुण को मानो, कोई कहता है सगुण को मानो, कोई कहता है निराकार को मानो, कोई कहते हैं विष्णु को मानो, कोई क्या बोलते हैं, तो आदमी भ्रम में पड़ जाए कि क्या करें। आपके शास्त्रों में तो बहुत सी बातें, तो इस प्रकार से तो भ्रम में डालने वाले हैं। और उस मत के अनुसार, एक उस मत के अनुसार ही चलते रहे तो कल्याण भी होता है। ख्याल करना चाहिए। आप लोगों को बड़ी महत्व की बात बताई जाती है, समझने की जरूरत है, बहुत गहराई से समझिएगा। हमारी जो भावना है यानी नियत है, रुपयों को प्राप्त करने की, वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि नियत भगवान की प्राप्ति की होनी चाहिए। खास बात बताऊं मैं, नियत यदि हमारी असल हो जाएगी और फिर साधन में भूल हो जाएगी तो भगवान क्षमा कर देंगे। क्षमा ही कर देंगे, इतनी बात नहीं है, भगवान संभाल भी लेंगे। नियत भगवान की तरफ की बना लो, भाई हमको जीवन में भगवान की तरफ ही चलना है, नियत तो है ये। और किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो जाए तो भगवान माफ भी करते हैं, संभालते भी हैं, और ये भी कहते हैं कि तुम कोई चिंता भी मत करो, हमको निश्चिंत भी बनाते हैं। बस नियत में दोष नहीं होना चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करना सच्ची नियत है। बीच में मान बड़ाई आ जाए, शरीर का आराम आ जाए, आदर देता है और वो हमको अच्छा लगता है, तो ये हमारी नियत का दोष है। अच्छा क्यों लगा? मान बढ़ाई, आराम, आदर, ये अच्छे लगने का अर्थ है कि नियत में अभी दोष है। जहां मान बढ़ाई प्राप्त हुई तो फिर चाहे भगवान नाराज हो, उसका आदर नहीं देना चाहिए मान बढ़ाई का, कि साहब मान बढ़ाई नहीं लोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा, भले ही हो जाओ। मान बढ़ाई की प्राप्ति हो गई और उसमें यदि हम राजी हो गए तो भगवान यदि नाराज भी होते हो तो भी हमें राजी नहीं होना चाहिए, आदर नहीं देना चाहिए। और यदि आदर देता है मान बढ़ाई को, तो वह साधन परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है, मान बढ़ाई के लिए करता है। क्योंकि जब मान बढ़ाई प्रतिष्ठा मिलती है तो फूल जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। यह भगवान की प्राप्ति में बड़ी भारी बाधा है। ऐसा मान करके इस मान बढ़ाई का आदर का तिरस्कार करना चाहिए। जो भगवान की प्राप्ति में बाधक है उसे लात मारकर निकाल देना चाहिए। जैसे किसी बढ़िए की दुकान है और उस दुकान में उसका बेटा यदि घाटे का काम करता है तो वो बेटे को निकाल देता है। यदि बेटा दुकान करता है खूब अच्छा कमाता है और पिता यदि उसमें नुकसान करते हैं तो बेटा साफ कह देता है कि पिताजी आपको दुकान से कोई मतलब नहीं है, आप अलग हो जाओ। वो पिताजी को दुकान में काम ही नहीं करने देगा क्योंकि उससे दुकान को घाटा लगता है ना। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति में मान बढ़ाई से यदि घाटा लगता हो, और घाटा लगता ही है, तो इसे लात मार कर निकाल देना चाहिए। यदि परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करते रहोगे तो कंचन कामनी में मान बढ़ाई में आप अटकेंगे भी नहीं। यदि हम साधन की खातिरी नहीं करेंगे तो नियत हमारी उच्च कोटि की नहीं है। कई कई दंभी और पाखंडी होते हैं जो भजन ध्यान का ढोंग करके दूसरे को मोहित करते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं और खूब आदर लेते हैं। जब वो पूजा स्वीकार करने लगते हैं तो वो तो पूजा का दास हुआ, भगवान का तो दास नहीं हुआ। स्त्री आदि को वश में करता है तो स्त्री का दास हुआ, परमात्मा का दास नहीं हुआ, ईश्वर का दास नहीं हुआ। यदि ईश्वर का दास होता तो सबको ठुकरा देता। कई साधक बाहर में खुली जगह में बैठकर खूब जोर से ध्यान लगाने की मुद्रा बनाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, और लोग देखते हैं ओहो ये कितने बड़े महात्मा हैं, कैसा ध्यान करते हैं, कितनी देर से कर रहे हैं, बहुत उच्च कोटि के ध्यान करने वाले महात्मा हैं। और जब एकांत में होते हैं तब न तो उनके हाथ में माला है, कभी कभार माला फेरने भी लगते हैं तो ऊंग आने लगती है, माला गिर जाती है, कोई देखता तो है नहीं, इसलिए सावधानी भी नहीं है। बाहर तो वह दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा था। आप समझिए क्या ऐसी जगह भगवान आते हैं? नहीं आते यार, क्योंकि वह तो ठगाई करता है। तो भगवान को भी ठगने लगता है, भगवान वहां क्यों आएंगे, बहुत दूर रहते हैं। भीतर से जो आदमी भगवान को चाहता है, नियत उसकी भगवान को प्राप्त करने में है और भगवान नहीं मिल रहे हैं, तो भीतर में एक दुख की ज्वाला उठेगी। क्या करें, मैं तो मौत की तरफ जा रहा हूं, क्या पता कब ये शरीर चला जाए, अब भगवान मुझे मिले नहीं, मेरी क्या दशा होगी, हे भगवान मुझे संभालो, ऐसे भीतर में दुख होगा। आप बिना हमारा कौन सहायक है, कोई नहीं है, ये भाव रखते हुए साधन करना चाहिए। कोई कहते हैं बस ठीक है, हमने हमारा जितना साधन था उतना कर लिया, रोज सुबह उठते हैं, पाठ पूजा करते हैं, नित्य नियम कर लेते हैं, भजन ध्यान हो गया, बस हो गया, हम तो साधन भजन कर चुके। ऐसे को भी भगवान जल्दी नहीं मिलते, क्योंकि वो जो साधन भजन हो गया, कर लिया, उसको बहुत मानता है कि हो हमने साधन भजन कर लिया। जो उच्च कोटि के महात्मा होते हैं, वे तो सारे दिन सब समय भजन ध्यान में लगते हुए भी कहते हैं कि हमने भजन ध्यान कुछ नहीं किया, और सामान्य आदमी थोड़ा भी भजन ध्यान करता है कि हम तो कर लिया। ये अच्छी बात नहीं है। हमारा समय यदि ठीक नहीं बीत रहा है तो ठीक बिताने की चेष्टा करनी चाहिए। सज्जनों, उस दिन को याद करो जब दांत तो टूट जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, चलना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, तब हमारा क्या उस अवस्था में सुधार होगा? उस समय शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां बढ़ेगी, उसका कष्ट हरदम सताता रहेगा, और अभी आपने भजन किया नहीं है, क्या दशा होगी? अभी आपके हाथ में समय है, संभल जाना चाहिए। भरोसा नहीं है कब मृत्यु आ जाए, कब मृत्यु आ जाए, इतना ही नहीं भरोसा नहीं है कि कब शरीर में बेहोशी आ जाए, लकवा आदि की बीमारी हो जाती है तो बुद्धि काम ही नहीं करती। लकवा आदि हो गया, बुद्धि काम नहीं करेगी, जीवित है तो भी क्या फायदा हुआ? भरोसा नहीं है मृत्यु का, कब इस संसार से हम चले जाए। आप सोचो, मृत्यु आएगी तो क्या आप उसे ये कह दोगे कि ए मृत्यु, आज मत आओ, कल आना, अभी हमको ले जाओ मत, अभी हमारा भजन ध्यान का काम बाकी है, गृहस्थ का भी काम बाकी है, अभी हमको मत ले जाओ, अभी हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, ऐसी ताकत है? मान लो आपने कह भी दिया तो कोई सुनेगा? इसलिए विचार करो कि शरीर के साथ ही सब चीज छूट जाएगी, किसी के साथ में कुछ भी संबंध नहीं रहेगा, कुटुंब के साथ में पाई भर भी संबंध नहीं रहेगा, हमारे साथ ये शरीर भी छूट जाएगा। हाँ, ये बात है, प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये साथ में जाएंगे, और प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि जैसा हम यहाँ इनको अच्छा बुरा बनाएंगे, ये आगे भी हमारे साथ रहेंगे। सज्जनों, आगे का दिन पहले क्यों नहीं देखते हैं? स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर से चले जाओगे, तुमको अपनी सारी उम्र में वही धन प्राप्त करना चाहिए ना कि जिससे भगवान खरीदे जा सकते। यदि इस जीवन में भगवान नहीं मिलेंगे तो आपके पास पूंजी भी क्या है? जो भजन ध्यान नाम जप आदि आपकी पूंजी होनी चाहिए वो तो रही नहीं, और दूसरी आपके पास पूंजी क्या है? जो कुछ आपने बटोरा है वो तो घाटे ही घाटे का काम है। यदि आप थोड़ा बहुत भी भजन साधन में लगते और पूरी स्थिति नहीं भी बनी तो गीता के अनुसार आप योग भ्रष्ट में जन्म लेते, और योग भ्रष्ट में जन्म लेने पर आपकी मुक्ति हो जाती। याद रखना चाहिए कि मानव शरीर के अलावा भगवान की प्राप्ति होनी बड़ी मुश्किल है। मनुष्य योनि तभी मिलेगी जब आप योग भ्रष्ट हो जाएंगे। अयति श्रद्धयो पेतो योगा चलित मानस है, अप्राप्य योग संसिद्धिम कांगतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने पूछा कि जो संयमी नहीं है, अयति माने संयमी नहीं है किंतु श्रद्धयो पेत है, जो योग में श्रद्धा है परंतु उसका मन योग से विचलित हो गया, वो कौन सी संसिद्धि को प्राप्त होगा ये आप बताओ। तो भगवान कहते हैं कि ना पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, उस पुरुष का न तो इस लोक में न परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अच्छे कर्मों को करने की कभी अच्छे कर्मों को करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। वह यहां से मरकर स्वर्ग में थोड़ा ही जाता है, स्वर्ग में नहीं जाता, योगियों के घर जन्म लेता है। यह कोई मामूली चीज थोड़ा ही है, लाखों में से कोई एक दो ऐसे होते हैं। योगी महात्मा पुरुषों को बोलते हैं, उनके यहां जन्म लेकर वह उनके जैसा ही आचरण करता है, फिर उसे भगवान की प्राप्ति होती है। ये असली धन है, जिस धन के कारण से योगियों के कुल में जन्म होता है। अच्छी नियत से किया हुआ साधन है कि जो आपके पास इतना धन बना, पूंजी बनी कि अगला जन्म आपको योगियों का मिला। इस जन्म में मन बुद्धि को शुद्ध बनाकर जाएंगे तो दूसरे जन्म में तो भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी। इसी जन्म में 15 आना फायदा हो जाएगा तो फिर आगे जन्म ही लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए ज्यादा लाभ की बात जो होती है उसको पहले ध्यान में रखना चाहिए। इंद्रियों की पवित्रता रखनी चाहिए। जैसे नेत्र है, नेत्र की पवित्रता क्या है? माताओं बहनों को अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए। अपने से बड़ी हो तो उनको माता के समान समझो, बराबर वाली की हो तो उनको बहन के समान समझो, और छोटी अवस्था में हो तो उनको पुत्री जैसा समझो। सब में ईश्वर देखो, हमारे नेत्रों में पवित्रता आ जाएगी। बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए ज्ञानी महापुरुष सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा मानते हैं, वो महात्मा बड़े दुर्लभ हैं। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान पुरुष मुझे प्राप्त होता है। वासुदेव सब जगह है ऐसा मानना बड़ा दुर्लभ महात्मा है। अब कोई कहे कि भाई ऐसे दुर्लभता के लिए तो हमको लंबे समय तक अनेक जन्मों तक साधना करनी पड़ेगी, तो बहुत तो इसमें हम बोलते हैं बहुत से जन्म तो हो चुके। आप यही समझो कि बहुत जन्म हमारे हो चुके, अब हमको इसी जन्म में भगवान का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो यही हमारा अंतिम जन्म हो जाएगा। सब में भगवत बुद्धि हो जाए, सबको भगवान समझकर सेवा करें तो हाथ पवित्र हो जाए। भगवान के गुण प्रभाव और प्रेम की बात सुनोगे तो कान पवित्र हो जाए। किसी की निंदा मत सुनो, न किसी की निंदा में रुचि रखो। निंदा की बातें सुनने से कान दूषित होते हैं, दोष इकट्ठे होते हैं। जैसे फोनोग्राम है उसके अंदर हमारी आवाज पकड़ी जाती है, पहले फोनोग्राम ही होते थे उसमें हमारी आवाज पकड़ी जाती है, ऐसे ही दूसरों की निंदा दूसरों के दोष सुनोगे तो आपका हृदय उन दोषों में चिपक जाएगा। कहीं कुछ भी आपको दिखे तो वासुदेव सर्वम ऐसा अंदर से भाव रखना चाहिए, उच्च भाव है। वाणी की पवित्रता है कि वाणी से किसी को भी गाली नहीं निकालनी चाहिए। किसी को गाली निकालोगे, किसी की निंदा करोगे, मिथ्या भाषण करोगे तो वाणी आपकी दूषित होगी। जिसको आप गाली निकालते हो उसका कोई नुकसान नहीं है, उसके तो लाभ है। जिसकी निंदा करते हो उसके पाप धुपते हैं, उसको तो लाभ है, लेकिन आपकी वाणी दूषित हो जाती है। ये संस्कार आपके मरने पर साथ जाएंगे। वाणी के द्वारा भगवान के नाम गुणों का स्वाध्याय हो तो परम पवित्र हो जाए, हमारा इस जन्म में कल्याण हो जाए। ये इंद्रियां यदि यहां पर इस जन्म में शुद्ध हो जाए तो यही प्राप्ति, नहीं तो अगले जन्म में तो भगवान की प्राप्ति होगी होगी। हमने यदि वाणी में कूड़ा करकट भर लिया, कानों में कूड़ा करकट भर लिया, जीभ में कूड़ा करकट भर लिया, नेत्रों में कूड़ा करकट भर लिया, तो बताओ कूड़े की जगह ही कूड़े को डाला जाता है तो नरकों में ही जाना पड़ेगा। गांव के अंदर अकूरडी हुए, अकूरडी कचरो वे जो को अकूरडी में ही डाले, कोई साफ जगह पर कोई कौन डाले। तो इनके अंदर कूड़ा करकट भर लिया तो कूड़े करकट वाली जगह में ही पड़ना पड़ेगा, तामसी होनी मिलेगी और वहां के दंड भोगने पड़ेंगे। अब भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए तेजी से चेष्टा करनी चाहिए, इसी जन्म में हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमारे पास जितनी शक्तियां हैं उन सबको परमात्मा की प्राप्ति में लगाना चाहिए, नहीं तो घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, इन सब बातों को सोचकर हमें परमात्मा की प्राप्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। जब हित की बात है, हित की नहीं परम हित की बात है, तो भी आप लोग ध्यान नहीं देते। इससे बढ़कर और कोई हित है क्या? आप भटकते फिरते हैं क्योंकि आपको पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तभी तो कभी धन अच्छा लगता है, कभी मान बढ़ाई अच्छी लगती है, कभी परिवार अच्छा लगता है, कभी क्या अच्छा लगता है, कभी क्या अच्छा लगता है। आपका मन आनंद से तृप्त नहीं हुआ। यदि उस परम आनंद से तृप्त हो गया होता तो उसके बाद स्वाभाविक ही आपकी कोई स्वाभाविक ही आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। और उस आनंद से यदि आपका मन भर गया होता तो किसी भी चीज की आवश्यकता भी नहीं रहती। वो आनंद की प्राप्ति ऐसी है, उसके बाद चाहे शरीर रहे चाहे न रहे, उसके आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता जी ने कितनी अच्छी बात कही, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। जिसको पाकर उससे बढ़कर कोई नहीं समझता, उस परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर भारी से भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। इसलिए हमारे पास शरीर मौजूद है तो इस चीज को प्राप्त कर लेना चाहिए, इसीलिए मिला है ये शरीर, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। बहुत शीघ्र और सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हम लोग इसकी अवहेलना करने से वंचित रह जाते हैं। गीता जी में कहा कर्तुम सुसुखम कर्तुम, ये करने में बहुत सुगम है, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाते हैं, बस केवल नियत बदलने की जरूरत है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया बेशित चेतसा। जिन्होंने मेरे में चित्त लगा दिया है उनका इस मृत्यु रूप संसार से समुद्र संसार समुद्र से मैं उद्धार करने वाला होता हूँ। उन्होंने मेरे में चित्त लगा दिया उन्हें मैं इस संसार सागर से पार कर जाऊं, देरी का काम नहीं है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेणादि गच्छति। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। वो श्रद्धावान कैसा हो तत्पर है और जितेंद्रिय संयतेंद्रिय है। जितेंद्रिय हो और तत्परायण हो परमात्मा परायण हो तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान ने जगह जगह जल्दी प्राप्ति की बात कही है। भगवान के यहाँ देरी का काम नहीं है। भगवान की प्राप्ति में देरी हमारी बनाई हुई है। भगवान जो जल्दी प्राप्त होने की बात कहते हैं इसमें एक रहस्य है कि भगवान आपसे मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं, तभी तो वे जल्दी की बात बोलते हैं। आप कहते हैं क्या करें, हमें तो साधन भजन करते हुए बहुत वर्ष हो गए, अभी तक हमको वो चीज नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। न तो कोई शांति मिली, न आनंद मिला, कुछ भी नहीं मिला, बहुत वर्ष हो गए। तो आप झूठे भले ही कहो, वास्तव में तो आपने साधन किया ही नहीं। जवाब दे रहे, आप भले ही मानो कि हमने साधन कर लिया और हमने इतने वर्ष लगा दिए, वास्तव में साधन किया ही नहीं है। साधन तो दामी होना चाहिए। जब आप दामी चीज चाहते हैं तो दामी साधन करना चाहिए। व्यवहार में भी देखो कि आप 50 रुपया खर्च करके 500 रुपए वाली चीज को कैसे ले लोगे। ऐसे ही आपके द्वारा अभी जो भजन ध्यान होता है उससे परमात्मा कैसे मिल जाएंगे। आप जिसको कठिन मानते हैं भगवान उसको सुसुखम कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि फल भी प्रत्यक्ष है, आज करो दूसरे जन्म में मिलेगा, श्राद्ध करो पितरों को फल मिलेगा, यहाँ पुण्य करो अगले जन्म में लाभ होगा, ऐसी बात थोड़ी है। यहाँ तो अभी करो और अभी फल मिलेगा। और यदि आपको अभी फल नहीं मिल रहा है तो आपको ही विचार करना चाहिए, आपकी स्थिति से आप ही विचार करें कि मेरे साधन में कहाँ कमी है। आप तो थोड़ा बहुत साधन करके खुश हो रहे हो कि हाँ साहब हम तो बहुत कर चुके, हमको तो नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिली। तो भाई आप ही ढूंढो कि आपने कहाँ कमी रखी है। भगवान कोई झूठ थोड़े ही बोलते हैं, वो तो कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम और कर्तुम सुसुखम और अव्ययम। 8 विशेषण देते हैं। ये सब विद्याओं की तो राजा है, सबका गोपनीय है, बड़ा पवित्र है, बड़ा उत्तम है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, इसकी तरफ चलने से धर्म बढ़ता है और करने में बड़ा सुगम है और अविनाशी है। 8 इसके विशेषण है। भगवान कहते हैं अर्जुन तू मेरा अतिशय प्यारा है इसलिए इतनी बात कहता हूं, नहीं तो मेरे को क्या पड़ी। कैसा भी पापी हो, जैसे कैसा भी मेला कपड़ा हो, वो सोडा साबुन के आने के बाद तो साफ हो ही जाता है। सोडा और साबुन से धो उसको साफ हो ही जाता है। उसी प्रकार हमारे ज्ञान में इतनी शक्ति है कि वह पापियों को भी पवित्र कर डालता है। प्रत्यक्ष भी फल है इसका। जिस प्रकार भोजन से भूख दूर होती है, इधर भोजन किया इधर भूख मिटी, इधर जल पिया इधर प्यास मिटी। तो भूख प्यास की निवृत्ति तो एक बार होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वापस भूख प्यास लग जाती है। किंतु ये एक ऐसी चीज है अविनाशी है, इसलिए अव्ययम कहा है। इसके वास्ते परिश्रम नहीं करना पड़ता, कठिनता नहीं है। इसको जो कठिन मानते हैं वे मूर्ख हैं। भगवान के वचनों पर हमको विश्वास करना चाहिए। और ये निश्चय करना चाहिए ये जन्म तो भगवान की प्राप्ति में ही लगाएंगे और इसी के लिए ही प्राण न्योछावर करके मर मिट जाएंगे लेकिन भगवान की प्राप्ति में ही लगेंगे। नारायण 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 नारायण। खास काम नियत की ही वही।